उसने धीरे से कहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? रेहाना बेगम ने पूछा, मगर उनके लहजे में सीधा सवाल छुपा हुआ था। मैं ठीक हूँ, सादिया ने छोटा सा जवाब दिया। और रेहान? उन्होंने तुरंत अगला सवाल किया। सादिया एक पल को रुकी, फिर बिल्कुल वही जवाब दिया जो हर बार देती थी। वो सो रहे हैं। कुछ सेकंड के लिए फ़ोन पर खामोशी छा गई, फिर रेहाना बेगम की आवाज़ थोड़ी बदल गई। जब भी मैं तुम लोगों को फ़ोन करती हूँ, रेहान सो रहा होता है? उनकी बात में शक साफ छलक रहा था। सादिया ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रही। रेहाना बेगम अब खुलकर बोल पड़ी, तुम लोग वहाँ क्या करने गए हो? सोने के लिए गए हो क्या? नहीं ताई अम्मी, हम लोग खाना भी खाते हैं, सादिया ने हल्के से कहा। उसके शब्द सीधे थे, मगर मतलब कहीं ज्यादा गहरा, जैसे वो कहना चाह रही हो कि बस सोना और खाना यही रह गया है। क्या मतलब? रेहाना बेगम ने तुरंत पूछा। अब उनकी आवाज़ में उलझन साफ थी। सादिया एक पल को रुक गई। उसे एहसास हुआ कि बात कुछ ज्यादा ही खुलने लगी है। नहीं, मेरा मतलब है हम बाहर भी जाते हैं, उसने जल्दी से अपनी बात संभाली। खाना खाने जाते हैं तब बाहर निकलते हैं। तो क्या तुम लोग बाहर शॉपिंग करने नहीं जाते? घूमने फिरने जाया करो, रेहाना बेगम ने थोड़ा समझाते हुए कहा। सादिया ने जबरदस्ती हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं अम्मी, जब हम खाना खाने जाते हैं ना, तो घूमने भी चले जाते हैं, शॉपिंग भी कर लेते हैं। फिर उसने खुद ही एक और बात जोड़ दी, रेहान ने तो यहाँ एक राइडिंग क्लब भी ढूंढ लिया है, हम लोग राइडिंग के लिए भी जाते हैं। ये सब कहते वक्त उसकी आवाज़ बिल्कुल सीधी थी, मगर ये सच नहीं था। वो सिर्फ बातों को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही थी, ताकि कोई सवाल ना उठे। फ़ोन के उस पार रेहाना बेगम कुछ पल चुप रहीं, फिर थोड़ा शिकायत भरे लहजे में बोली, मेरी तो बात ही नहीं सुनते तुम लोग, इतना सब करते हो तो मुझे पिक्चर्स ही शेयर कर लिया करो। सादिया का दिल एक पल को जैसे धड़कना भूल गया। वो क्या कहती, क्या दिखाती? उसने धीरे से कहा, अम्मी होटल से निकलते वक्त ना, वो अपना फ़ोन छोड़ देते हैं और मुझे भी नहीं ले जाने देते। क्यों? रेहाना बेगम की आवाज़ में अब साफ हैरानी थी। सादिया ने नज़रें झुका लीं, हालांकि वो उन्हें देख नहीं सकती थी, मगर फिर भी। वो कहते हैं जब हम दोनों साथ हैं तो फ़ोन लेकर जाने की क्या ज़रूरत है, उसने जैसे तैसे ये बात कह दी। ये भी सच नहीं था, मगर उसके पास सच कहने की हिम्मत भी नहीं थी। फ़ोन के उस पार खामोशी छा गई, और इस तरफ सादिया की आंखों में हल्की नमी आ गई थी। वो जानती थी वो झूठ बोल रही है, मगर ये झूठ उसके रिश्ते को बचाने के लिए था, या शायद खुद को टूटने से बचाने के लिए। तभी फरीद खान कमरे में आ गए। रेहाना बेगम अभी अभी सादिया से वीडियो कॉल पर बात कर रही थीं। उन्होंने फ़ोन को अपने सामने रखा ही था कि जैसे ही फरीद खान अंदर आए, उन्होंने बिना कुछ कहे कॉल काट दिया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। रेहाना बेगम ने गहरी सांस ली और सामने रखी फाइल उठाकर उसे पढ़ने लगी। जी क्या है ये सब, उन्होंने पन्ने पलटते हुए कहा। हमारे इतने कंटेनर स्पाइसेस पलट गए, उनकी आवाज़ में हैरानी साफ थी। फरीद खान ने सीधा जवाब दिया, जी नुकसान भी तो दिखाना है, ऑडिट होने वाला है। रेहाना बेगम ने एक नज़र उनकी तरफ उठाकर देखा, फिर फाइल पर झुक गई। कुछ पल बाद उन्होंने पूछा, तो आपकी रेहान से बात हुई, वो कब आ रहा है? फरीद खान ने आराम से कहा, अभी तो दो हफ्ते ही हुए हैं उन्हें गए। रेहाना बेगम की आवाज़ में अब हल्की सी उदासी आ गई। देखिए ना, उनके ना होने से घर में कितना सन्नाटा हो गया है। फिर जैसे अचानक उन्होंने फैसला लिया, अब उन्हें जल्दी बुला लेते हैं। फरीद खान ने तुरंत बात को आगे बढ़ाया, जी ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का मामला ठीक हो जाए, फिर हम उन्हें वहाँ से बुला लेंगे। रेहाना बेगम चुप हो गईं, उनकी नज़र अब भी फाइल पर थी, मगर सोच कहीं और चल रही थी। सादिया को भी बैठे बैठे पता नहीं क्या हो गया है, उन्होंने हल्की परेशानी के साथ कहा। सब ठीक चल रहा था, उनकी आवाज़ में अब शक भी था और बेचैनी भी। फरीद खान ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़े रहे। कमरे में फाइल के पन्ने पलटने की आवाज़ गूंज रही थी, मगर उन पन्नों के पीछे जो खेल चल रहा था वो सिर्फ कागज़ों का नहीं, बल्कि रिश्तों और भरोसे का भी था। ज़ुबैदा बेगम और माहिरा आफ्ताब के ड्राइंग रूम में बैठी थीं। सामने सेंटर टेबल पर चाय रखी थी और तीनों के बीच एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जैसे सब कुछ कहा जाना बाकी हो। ज़ुबैदा बेगम ने कप रखते हुए सीधी बात शुरू की, अब हमें मंगने की कोई तारीख दे दीजिए, उनकी आवाज़ में जल्दबाजी साफ छलक रही थी। आफ्ताब ने उनकी तरफ देखा, फिर थोड़ा संभल कर बोला, रिदा से बात किए बिना मैं ऐसा फैसला नहीं कर सकता, मुझे उससे बात करनी होगी। उसके बात सुनकर ज़ुबैदा बेगम का चेहरा हल्का सा सख्त हो गया। क्यों, तुम उसके भाई नहीं हो? उन्होंने थोड़े तीखे लहजे में कहा। तुम रिदा के लिए कोई गलत फैसला थोड़ी करोगे? आफ्ताब कुछ कह पाता उससे पहले ही माहिरा बोल पड़ी, क्या पता, हो सकता है वो निकाह ही ना करना चाहती हो। उसकी आवाज़ शांत थी, मगर बात सीधी थी। आखिर उसकी अपनी ज़िंदगी है, वो उसे अपने तरीके से जीना चाहे तो। माहिरा ने बिना घुमाए फिराए अपनी बात रख दी। तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें अंदाज़ा है? ज़ुबैदा बेगम ने उसे डांटते हुए कहा। उनके लिए ये बात सुनना आसान नहीं था,
माहिरा ने गहरी सांस ली, मगर इस बार वो पीछे नहीं हटी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आपने अपनी बात बता दी, उसने नरमी से कहा, तो इन्हें भी अपना फैसला करने का टाइम दीजिए। उसकी नजर आफताब की तरफ गई, फिर उसने धीरे से जोड़ा, रिदा को टाइम चाहिए। किसी भी रिश्ते को खुशी से कबूल करने के लिए वक्त होना बहुत जरूरी होता है। उसकी आवाज में अब सिर्फ तर्क नहीं था, बल्कि उसका अपना तजुर्बा भी छलक रहा था। कमरे में खामोशी छा गई। जुबैदा बेगम अब कुछ नहीं बोली, मगर उनके चेहरे पर नाराजगी साफ थी। आफताब गहरी सोच में पड़ गया था, और माहिरा, वो बस इतना चाहती थी कि इस बार कोई फैसला जल्दबाजी में ना हो, क्योंकि वो जानती थी जब रिश्ता दिल से ना जुड़ पाए तो वो उम्र भर बोझ बन जाता है। जुबैदा बेगम ने जैसे बात खत्म करते हुए कहा, अब रिदा जल्दी से हमारे घर आ जाए, इसके बिना हमारा मन ही नहीं लगता। उनकी आवाज में अपनापन भी था, मगर साथ ही एक जल्दबाजी भी, जो साफ महसूस हो रही थी। रात हो चुकी थी। घर का माहौल दिन की हलचल के बाद भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। दरवाजा खुला और इकबाल अंदर आया। उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सुल्ताना, उसने ऊंची आवाज में पुकारा। सुल्ताना बेगम तुरंत बाहर आईं। क्या हुआ, उन्होंने घबरा कर पूछा। इकबाल ने बिना रुके कहा, जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं खुद बात करूंगा तो किससे पूछकर तुम उस औरत की मुंह लग गई। उसकी आवाज में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सुल्ताना बेगम हैरान रह गई। हुआ क्या है, पता तो चले, इकबाल ने झुंझलाकर कहा। हुआ यह है कि उस औरत ने पूरे मोहल्ले में बात फैला दी है। हर जगह हमारी बेटी की ही चर्चा हो रही है। उसकी सांसें तेज हो गई थी, लोग मुझे देखकर बातें कर रहे हैं, मेरा चलना मुश्किल हो गया है। सुल्ताना बेगम के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता किस तरह से बात करनी है और किससे नहीं। इकबाल का गुस्सा अब उन पर उतर रहा था। सुल्ताना बेगम ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं क्या करती, घर पर जवान बेटी है और वो आदमी देखो अभी भी ऊपर खड़ा है। उन्होंने छत की तरफ इशारा किया। इकबाल ने भी नजर उठाकर देखा, खलील सच में अब भी वहीं खड़ा था, चुपचाप मगर सब पर नजर रखे हुए। इकबाल का चेहरा और सख्त हो गया। जब घर में जवान बेटी होती है, उसने धीमे मगर भारी लहजे में कहा, तो दूसरों को बात करने का मौका नहीं दिया जाता। उसकी बात में सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक बाप की चिंता भी छुपी थी। सुल्ताना बेगम चुप हो गई, उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था। घर के अंदर खामोशी छा गई, मगर बाहर मोहल्ले की फुसफुसाहटें अभी भी जिंदा थी।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं।